أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں اور ہمارے اس کاریکرم کے سبھی پریہ درشکوں آپ سبھی کو پیار بھرا سلام ایشور سے یہی آشا ہے کہ آپ سبھی سکھی پرسن اور سوستھ ہوں ہم اپنے آج کے کاریکرم میں جس بات چیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا شیرشک ہوگا روزے کی نیت اور وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں یا روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ہم آج اسی بارے میں بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر وہ عبادت جس کو عبادت کہا گیا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس کے پورن ہونے کے لیے آوشک یہ ہے کہ اس کو وشیش نیت کے ساتھ انجام دیا جائے، یعنی اس پرکار انجام دیا جائے کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ وہ ایشور کے آدیش کے لیے اس کارے کو انجام دے رہا ہے۔ اور چونکہ روزہ بھی ایک عبادت ہے، ایک اپاسنا ہے ایشور کی، اس لیے اس میں بھی نیت ہونا آوشک ہے۔ اسی نیت سے سمبندھت ہم کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ، اسلام میں روزے کا ارتھ بھوک ہڑتال یا بھوکے رہنا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں روزے کا ارتھ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایشور کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ وشیش کاریوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور یہ کام جو ہو رہا ہے نیت کے ساتھ ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نیت کا زبان سے جاری کرنا، زبان سے کہنا آوشک نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں یا اس کی انتر آتما میں یہ نیت پائی جا رہی ہے تو یہی کافی ہوگا اس کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں انسان یہ بھی کر سکتا ہے اس کی نیت کے لیے، یعنی جو روزے ہیں ان کی نیت کے سمبندھ جو میں جو مسئلے بیان کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان رمضان کی پہلی رات کو ہی تمام روزوں کی نیت کر سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر روزے کی نیت ایک کے بعد ایک جب روزہ آئے تو اس کی نیت کو انجام دے۔ تو اس سے سمبندھ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد ہر وہ روزہ جو واجب ہے، جیسے رمضان کا روزہ، جیسے نظر کا روزہ، یا اگر کسی کوئی قسم کھائی ہے اس کا روزہ، اس پرکار کے جتنے بھی روزے ہیں، ہر وہ روزہ جو واجب ہے اس کے نیت کا انتم سمے کیا ہے؟ ان کی نیت کا انتم سمے یہ ہے کہ کم سے کم، یعنی انتم سمے انسان صبح کی اذان سے پہلے نیت کر لے، یہ انتم سمے ہے۔ اس کے بعد نیت ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن مگر یہ کہ کوئی وشیش پرستھتیاں ہوں جن کے بارے میں ہم آگے بات چیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب واجب روزے میں، جیسے ہم نے بتایا کہ واجب روزے کی انتم سمے سیما یہ ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے آدمی نیت کر لے۔ اب اگر واجب روزے مثلا رمضان کے روزے میں کسی کارنوش انسان بھول گیا مان لیجئے، یا یاترا پر تھا، اس کارن وہ صبح کی اذان تک نیت نہیں کر سکا، تو اب کیا کرے؟ تو ہمارے فقہا یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر واجب روزوں کی کسی کارنوش مثلا بھول جانے کے کارن وہ صبح کی اذان تک نیت نہیں کر سکا ہے، تو اگر ظہر سے پہلے پہلے نیت کر لے تو اس کی یہ نیت ماننی ہوگی، اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ لیکن اگر ظہر تک نیت نہیں کرتا ہے اور ظہر کے بعد یاد آتا ہے تو اس کی نیت یہ صحیح نہیں ہوگی اور اس کا روزہ صحیح نہیں کہا جائے گا، یعنی انتم سمے سیما اس ویکتی کے لیے جو بھول گیا ہے یا یاترا پر تھا، اس کے لیے انتم سمے سیما ظہر سے پہلے تک ہے۔ ظہر سے پہلے تک بہرحال اس کو اپنے روزے کی نیت کرنا ہوگی۔ उसके बाद ये तो वाजिब रोज़े के बारे में हो गया, अब मुस्तहब रोज़े की बारी आई। अगर इंसान कोई मुस्तहब रोज़ा रखना चाहता है तो उसकी नियत की अंतिम समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर हमारे फुकहा और इस्लाम ने हमको बहुत छूट दी है, बहुत इजाज़त दी है, और कहा यह है कि मुस्तहब रोज़ों की अंतिम समय सीमा मगरिब से पहले तक, यहाँ तक कि अगर मगरिब में 1 मिनट ही बाकी रह गया है और इंसान ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो रोज़े को तोड़ता हो, तो काफ़ी है। यानी क्या मतलब? यानी ये कि अगर मगरिब से 1 मिनट पहले तक भी इंसान ने कोई भी तोड़ने वाला कार्य अंजाम नहीं दिया है, रोज़ा तोड़ने वाला, मसलन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इस प्रकार का कोई कार्य अंजाम नहीं दिया है, तो अगर मगरिब से 1 मिनट पहले भी मुस्तहब रोज़े की नियत कर लेता है तो वो उसकी नियत सही होगी और उसका वो रोज़ा माना जाएगा। इसके लिए बहुत वसी समय सीमा बयान की गई, किसी भी समय तक वो रोज़े की नियत कर सकता है। उसके बाद एक ये हो सकता है कि इंसान भूल जाए अगर रोज़े की नियत करना, मसलन उसके ऊपर कोई वाजिब रोज़ा था और उसने, जैसे कि हम इस मसले को पहले बयान किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई वाजिब रोज़ा बचता है, कोई वाजिब रोज़ा उसके ऊपर वाजिब है, मसलन रमज़ान के कज़ा रोज़ा वाजिब है, तो वो मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति भूले से उसके ऊपर वाजिब रोज़ा बचा हुआ था और उसने मुस्तहब रोज़े की नियत कर ली, तो वो क्या करे? तो अगर उसको वो भूल गया, उसने नियत करना भूल गया है, तो अगर जोहर से पहले तक याद आ जाता है कि उसके ऊपर कोई वाजिब रोज़ा बचा हुआ था, मसलन रमज़ान के कज़ा रोज़ा की मसलन रमज़ान का एक कज़ा रोज़ा बचा हुआ था, तो वो अपने रोज़े की नियत को बदल सकता है। यानी जैसे ही उसको जोहर से पहले तक ये याद आया कि मेरा एक वाजिब रोज़ा रह गया था, वो अपने मुस्तहब रोज़े की नियत को बदल के वाजिब की तरह पलटा देगा, जोहर से पहले तक ऐसा काम कर सकता है। लेकिन अगर जोहर के बाद याद आए, यानी उसने मुस्तहब रोज़े की नियत कर ली है, जोहर के बाद उसको ये बात याद आती है कि मेरा रमज़ान का एक कज़ा रोज़ा बाकी रह गया था, तो अब क्या है? तो यहाँ पर उसका रोज़ा बातिल है, वो अपने रोज़े की नियत को बदल नहीं सकता है, उसका रोज़ा बातिल माना जाएगा और ये रोज़ा सही नहीं होगा। उसके बाद जब हमने ये बयान किया कि जिसके ऊपर वाजिब रोज़ा बचा हुआ है वो मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकता है, तो अब अगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी पेश आए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी दूसरे के रोज़ों को ले रखा है, यानी वो अजीर बना हुआ है, इस्तेजारी रोज़े रख रहा है, तो क्या ऐसा व्यक्ति कि मुस्तहब रोज़ों को रख सकता है या नहीं? तो यहाँ पर हमारे सारे फुकहा इस बात की इजाज़त दे देंगे, यहाँ अगर कोई इंसान इस्तेजारी रोज़े लिए हुए है तो मुस्तहब रोज़ा रख सकता है। इस्तेजारी रोज़ों का वाजिब होना उसके ऊपर मुस्तहब रोज़ों के बातिल होने का कारण नहीं बनेगा और उसके रोज़े मुस्तहब सही होंगे। उसके बाद एक मसला जो पेश आ जाता है वो ये कि अगर इंसान को शक हो कि जो ये आज का दिन है वो शाबान की आखिरी तारीख़ है या रमज़ान की पहली तारीख़ है, और ऐसे दिन में उसने रोज़ा रखा और नियत की कि वो कज़ा रोज़ा रख रहा है, इस नियत के साथ, कज़ा नियत के साथ उसने रोज़ा रख लिया, उसको ये शक था कि पता नहीं ये जो दिन है शाबान का आखिरी दिन है या रमज़ान का पहला दिन है, तो अगर ऐसे रोज़ा रख लिया है और अगर उसको जोहर से पहले पहले ये पता चल जाए कि ये जो दिन है वो रमज़ान की पहली तारीख़ है, अगर जोहर से पहले पता चल जाता है तो वो अपनी नियत को बदल देगा और रमज़ान की नियत को रख लेगा, रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेगा। अगर उसको बाद में मालूम हुआ जोहर के बाद, तो उसका वो रोज़ा रमज़ान का रोज़ा माना जाएगा और उसके रमज़ान के रोज़े के साथ उसको शुमार कर लिया जाएगा, उसको नियत बदलना या इस प्रकार की चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जैसे ही जोहर के बाद पता चला कि रमज़ान की पहली तारीख़ है, ऑटोमेटिकली उसकी नियत बदल जाएगी। उसके बाद जो मसले पेश आ सकते हैं, अब अगर ये मसला हुआ उस व्यक्ति के लिए जिसको शक था कि ये पहली तारीख़ है रमज़ान की या शाबान की अंतिम तारीख़ है, अब अगर किसी व्यक्ति को पता है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में जानबूझकर उसने मुस्तहब रोज़े की नियत कर ली, क्योंकि रमज़ान के में रोज़ा रखना वाजिब है, उसने जानबूझकर मुस्तहब रोज़े की नियत की, तो क्या होगा? तो हमारे फुकहा यहाँ पर यह कहते हैं कि अगर इंसान मुस्तहब रोज़े की नियत करे रमज़ान में जानबूझकर, तो ये उसका मुस्तहब रोज़ा नहीं माना जाएगा और रमज़ान का रोज़ा भी नहीं माना जाएगा, ना ये रोज़ा ना वो रोज़ा, बल्कि ये इसका कुछ नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर वाजिब ये होगा कि बाद में इस रोज़े की कज़ा करे या कफ़ारा दे। इसके लिए हमें तौज़ील मसाइल जैसी किताबों को देखना होगा। उसके बाद अब चूँकि हम नियत की बात कर रहे हैं, तो जब रमज़ान के रोज़े की नियत की बात आती है कि रमज़ान के रोज़े में अंतिम नियत क्या होगी, तो रमज़ान के रोज़े में ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूला ना हो, कुछ वो मुश्किल ना हो उसके साथ, उस व्यक्ति के लिए रोज़े के नियत की अंतिम समय सीमा अज़ान सुबह है। यानी क्या मतलब? यानी अज़ान सुबह के बाद वो जो इमसाक कर रहा है, यानी वो जो उन विशेष चीज़ों से रुक रहा है, वो नियत के साथ हो। इसमें ये शर्त नहीं है कि वो नियत को अपनी ज़बान से जारी करे या अपने दिल में भी जारी करे, बल्कि अगर उसकी अंतर आत्मा में ये बात पाई जाती है कि वो जो इन चीज़ों से रुक रहा है, इन चीज़ों से दूर रह रहा है, ये रोज़े के कारण है, तो यही उसके लिए काफ़ी होगा। तो ये वो चीज़ें थीं जो रमज़ान के रोज़ों में नियत से संबंधित थी। ये वो अहकाम थे जो हमने आपके सामने बयान किए। इससे संबंधित और भी अहकाम हो सकते हैं जिसके लिए हम तौज़ुल मसाइल जैसी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें रोज़े से संबंधित हमारे सामने पेश आ सकती हैं वो क्या हैं? वो जो दूसरी चीज़ होती है मुब्तलात रोज़ा, यानी वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल कर देती हैं, वो क्या चीज़ें हैं? जैसे कि हमने कहा कि रोज़े की अवधि क्या है। रोज़े की अवधि ये है कि अज़ान सुबह से लेके अज़ान मगरिब तक वो उन विशेष कार्यों को अंजाम ना दे जिनको रोज़े में करने से मना किया गया है। अब यहीं से रोज़ों को तोड़ने वाली चीज़ों की बात स्पष्ट हो जाती है। अगर कोई रोज़ेदार नम अज़ान सुबह के बाद से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले तक उन विशेष कार्यों को अंजाम दे दे जिनको करने से मना किया गया है रोज़े की हालत में, अगर अंजाम देता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को मुब्तलात रोज़ा, ये रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें कहा जाता है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं, हम आपके सामने एक के बाद एक बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो रोज़े को तोड़ देती है वो खाना और पीना। अगर इंसान रोज़े की स्थिति में कुछ खा लेता है, कुछ पी लेता है, चाहे वो खाने और पीने वाली चीज़ कितनी ही कम क्यों ना हो, अगर खाता और पीता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और ये उसको रोज़े के तोड़ने का कारण बनेगा। सबसे उसके बाद दूसरी चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती है और रोज़े को तोड़ देती है वो ये कि खुदा रसूल और अइमा और अहले बैत के ऊपर कोई झूठा बोहतान बांधे, इल्ज़ाम लगाए। इस प्रकार का अगर कार्य करता है रोज़े की स्थिति में तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा बातिल है उसका। तीसरी चीज़ जो रोज़े को बातिल कर देती ये है कि गाढ़ा गुबार, गाढ़ी धूल, गाढ़ी मिट्टी, इस प्रकार की चीज़ों को इंसान अगर हलक में पहुंचा देता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ हमारे रोज़े को बातिल होने का कारण बनती है वो है ये कि इंसान अपने सर को पानी में डुबो दे। यहाँ पर एक बात जो बयान कर दूँ, रोज़े में बातिल होने का कारण सर का डुबोना बनता बच बन सर का डुबोना रोज़ा बातिल होने का कारण बनता है। अगर सर के अतिरिक्त पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया जाए तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। मसलन अगर कोई स्विमिंग पूल या तालाब या नहर या समुद्र वगैरह में जाए, उसका सर बाहर रहे, उसके अलावा पूरा शरीर पानी के अंदर हो, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसके उलट अगर केवल सर डुबो दे, मसलन एक टब में पानी भर के उसके अंदर सर को डुबो दे, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा भले ही पूरा शरीर पानी के बाहर है। उसके बाद जो रोज़े को बातिल करता है वो क़य करना, यानी उल्टी करना। अगर इंसान जानबूझ के कई या उल्टी कर रहा है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। उसके बाद जो रोज़ा तोड़ने का कारण बनता है वो है जेमा या संभोग। अगर इंसान अपनी पत्नी से या ईश्वर न करे किसी और स्त्री से संभोग करता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। यानी अगर ये कार्य रोज़े की स्थिति में किया जा रहा है तो उसका रोज़ा बातिल है। उसके बाद जो चीज़ हमारे रोज़े को बातिल कर देती है वो है हैज़, निफास, जनाबत की स्थिति में अज़ान सुबह तक रहना। यानी अगर किसी के ऊपर जनाबत का गुस्ल वाजिब था या हैज़ और निफास का गुस्ल वाजिब था, वो सुबह की अज़ान तक अगर गुस्ल नहीं करता है और अपनी उसी स्थिति पर बाकी रहता है तो उसका उस दिन का रोज़ा बातिल होगा और रोज़ा सही नहीं माना जाएगा। उसके बाद किसी जो हमारे रोज़े को तोड़ने का कारण बनता है वह किसी बहने वाली चीज़ से अनीमा लेना। यानी अगर इंसान रोज़े की स्थिति में किसी बहने वाली चीज़ से अनीमा लेता है तो वो उसके रोज़े का कारण बनेगा। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमारे रोज़े को तोड़ देती हैं, जो हमने आपके सामने एक के बाद एक सिर्फ गिनवाया है। इनसे संबंधित विस्तृत मसलों को हम आपके सामने अगले कार्यक्रमों में बयान करते रहेंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे अगले कार्यक्रमों को अवश्य देखें। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में इंशाअल्लाह सुखी, प्रसन्न और स्वस्थ रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।